शांति, ओम शांति। संकल्प शक्ति द्वारा स्वभाव और संस्कार का परिवर्तन। देखिए, जो हमें आज हमारा जो ब्राह्मण जीवन है, इसका लक्ष्य क्या है? संस्कार परिवर्तन। कि हमारे संस्कार जो आज अभी हमारे संस्कार, पहले मनुष्यों के संस्कार थे, मनुष्यों में भी शूद्रों के संस्कार थे, वो बदल करके पहले ब्राह्मणों के संस्कार बने, फिर फरिश्ता के संस्कार बने, और फिर देवताओं के संस्कार बन जाए, है ना। तो संकल्प शक्ति के द्वारा हम कैसे अपना स्वभाव और संस्कार का, स्वभाव माना नेचर, जैसे आग की नेचर क्या होती है? गर्मी। और पानी की नेचर क्या होती है? ठंडक। तो देहभान, जैसे हमारे जो देहभान है, देहभान जो देहभान का स्वभाव है, इसकी नेचर क्या है? जो ये पांच विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, है ना, इसका स्वभाव है ना। और फिर आदत, फिर आदत क्या है ना, देहभान की आदत क्या है। ऐसे ही आत्मा जो है, आत्मिक आत्मा, मैं आत्मा हूं, ये संकल्प जब है, मैं आत्मा हूं, तो इसका स्वभाव क्या है? इसका स्वभाव है सात गुण, शांति, प्यार, खुशी, आनंद, शक्तियां, है ना। और फिर संस्कार उसका क्या है? तो आज इसी बात को हम गहराई से चिंतन करेंगे, कैसे हम अभी जो हम परमात्मा के बच्चे हैं, जो बावन हमें संकल्प दिए हैं, कैसे हम उस संकल्प शक्ति को जमा करके कैसे हम अपने स्वभाव संस्कार को अभी हम ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता के संस्कार बना ले, स्वभाव संस्कार बना लें, और जल्दी से अपना कार्य, जैसे अभी जो परसों बाबा जब आए थे तो जो मुरली चली, कि स्मृति स्वरूप बन के, अनुभवी मूर्त बन करके हम तीव्र गति से सेकेंड में तीव्र गति का पुरुषार्थ करके क्या बन जाए? पास विद ऑनर हो जाए, है ना। तो इसी बात को हम गहराई से पहले लेते हैं। सबसे पहले हम एक सिंपल सी बात को लेकर चलते हैं कि अगर हम मन में देखें ना, मन क्या चीज है? कहते ना, संकल्प जो है मन का एक, मन माने सोचने की शक्ति, राइट। कि तू मन खाली सोचने की शक्ति नहीं, संकल्प शक्ति नहीं है मन, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति मन संकल्प शक्ति है। संकल्प के द्वारा हम कुछ भी कर सकते हैं। कहते ना, ब्रह्मा ने संकल्प के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति की, जो ब्रह्मा ने नहीं की, कहते शिव बाबा ने संकल्प के द्वारा नई सृष्टि की, ब्रह्मा के द्वारा संकल्प की सृष्टि, मतलब नई सृष्टि की रचना करते हैं। तो अब संकल्प से रचना कैसे होती है उसको हम देखते हैं, कैसे हमारा स्वभाव बदलता है और कैसे संस्कार बनते हैं। संस्कार माना आदत बनती है। अगर मन के, मन को हम देखें, मन में चार एस्पेक्ट हैं। मन खाली सोचने की शक्ति नहीं है, मन को हम, मन में चार चीजें हैं। मन में सबसे पहली चीज संकल्प। संकल्प कैसे पैदा होते हैं? या तो कोई चीज हम देखते हैं, कर्मेंद्रियों के द्वारा महसूस करते हैं, जैसे हम आंखों से देखा तो संकल्प चलेगा, कोई चीज हमने देखी संकल्प चलेगा, कोई चीज पढ़ी संकल्प चलेगा, है ना, लिखने वाले ने बहुत अच्छा लिखा है संकल्प चलेगा ना, कोई सुना संकल्प चलेगा, कुछ चीज खाई संकल्प चलेगा, है ना, कोई चीज छुएंगे संकल्प चलेगा। या तो संकल्प कहां से चलते हैं? इन कर्मेंद्रियों के द्वारा हम महसूस करते हैं और फिर संकल्प चलता है। या कभी कभी क्या होता है, जैसे अपने आप ही अंदर से संकल्प उठता है। जैसे एक पानी की झील होती है ना, साफ पानी की झील होती है, उसमें लहरें दो तरह से प्रकट हो सकती हैं। या तो कोई बाहर से पत्थर मारे, पत्थर मारने से लहरें उठेंगी ना, लहरें उठेंगे। और दूसरा, जब पूर्णमासी का दिन होता है तो उस दिन क्या होता है, जब फुल मून होता है तो ज्वार उठता है झील में, और उससे भी लहरें उठ जाती। तो ऐसे ही कभी कभी हमारे अंदर अपने आप ही हमारा जो स्मृतियां हैं, हमारी जो पुरानी स्मृतियां, उससे बैठे बैठे अचानक हमने कुछ देखा भी नहीं, कुछ सुना भी नहीं, कुछ खाया भी नहीं, कुछ छुआ भी नहीं, अपने आप संकल्प उठने शुरू हो जाते हैं। कोई बात अपने आप ही याद आ जाती है और विचार चलने शुरू हो जाते हैं। ऐसा होता नहीं होता है? तो दो तरह संकल्प उठते हैं। या तो हम पांचों कर्मेंद्रियों के द्वारा कुछ देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, या छूते हैं, या किसी के संबंध संपर्क में आते हैं तो संकल्प चलते हैं। या फिर क्या होता है, हमारी पुरानी स्मृतियों से फाइलें खुल जाती हैं। अब संकल्प जो है, वैसे अपने आप में, जैसे संकल्प एक बिंदु है, कोई भी संकल्प का संकल्प की बिंदु है। अगर संकल्प और भावना में एक संकल्प से फिर नेक्स्ट जो एस्पेक्ट है मन का वो है भावना, इमोशन, और उसके नेक्स्ट थर्ड वाला संकल्प वो एस्पेक्ट है वो है वृत्ति, उसे दृष्टिकोण भी कह सकते हैं इंग्लिश हिंदी में, नजरिया भी कह सकते हैं इंग्लिश में, एटीट्यूड कहते हैं, और चौथा है स्मृति मतलब यादें। ये कैसे परिवर्तन, चारों का आपस में क्या कनेक्शन है, चारों ही मन को, इसको इंग्लिश में हम टीम भी कह देते हैं, थॉट्स माना संकल्प, इमोशंस माना भावनाएं, वृत्ति माना एटीट्यूड, एटीट्यूड वृत्ति, और मेमोरीज, तो टीम, तो मन माना टीम। ये टीम कैसे आपस में कनेक्टेड है इसको हम देखते हैं, और कैसे हमारा अंदर क्या मैकेनिज्म है इसको हम गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, और साथ साथ हमारी बॉडी में इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं। जैसे जैसे हमारे ये टीम थॉट्स जब इमोशंस बनते हैं, इमोशंस जब वृत्ति बनती है अर्थात एटीट्यूड बनता है, और जब एटीट्यूड स्मृति में परिवर्तन होता है, तो हमारे अंदर भी क्या शरीर में क्या परिवर्तन होते हैं उसको उस लेवल पे हम देखते हैं, है ना, ताकि हम देखें कि कैसे हमारे विचारों के साथ अंदर की सृष्टि कैसे बदल रही है, अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है, हमारे शरीर में क्या परिवर्तन, मन में क्या परिवर्तन हो रहा है, तो उससे हमारे कैसे हमारे अंदर फिर बीमारियां आती हैं ये भी हम समझ सकते हैं ना, मन में या तन में रोग कैसे पैदा हो जाते हैं और कैसे फिर उनको ठीक कर सकते हैं, तो हम इस बात को थोड़ा गहराई समझते हैं। संकल्प और भावना में क्या फर्क है, संकल्प जैसे एक बिंदु है, हमने एक बिंदु लगाया, विचार आया, और अगर हम उसी संकल्प को बार बार करें और गहराई से करें तो क्या होता है, वो भावना का रूप बन जाता है। इंटेंस थॉट्स बिकम इमोशंस। कोई भी विचार अगर आप गहराई से करते हैं, बार बार करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, भावना बन जाता है। जैसे कोई व्यक्ति आपको मिलता है, वो आपको आज मिला, उसने बहुत प्यार से देख के आपको मुस्कुराया, थोड़ी देर में फिर मिला क्रॉस करते, फिर आपको कहा भाई साहब ओम शांति, या बहन दीदी ओम शांति, है ना, तो फिर आपको कल मिला, कल दोबारा मिला, तो फिर उसने आपको एक गुलाब का फूल दिया, फिर कहा भाई साहब ओम शांति, है ना, तो क्या होगा आपके मन में उसके प्रति क्या होगा। कल तक वो व्यक्ति अनजान था, किंतु आज वो व्यक्ति के बारे में आपके मन में विचार चलना शुरू हुआ ना, तो भावना क्या उठ रही है अंदर से, अब भावना बन रही है, वो क्या भावना बन रही है कि भाई तो बहुत अच्छा है ना, क्योंकि उसने ओम शांति भी कहा, मुस्कुराता भी है, गुलाब का फूल भी दिया, है ना, है ना, तो मतलब आपके मन में उसके प्रति भावना उत्पन्न होना शुरू हो गई, फीलिंग पैदा होनी शुरू हो गई। जैसे अधिकतर भावना दो संबंधों के बीच में होती है, जैसे बाप और बेटे के बीच में, माँ और बेटे के बीच में, ना, पति पत्नी के बीच में, भाई बहन के बीच में, ना? दो भाइयों के बीच में, जब हम एक दूसरे के बारे में संकल्प करते हैं, गहराई से करते हैं, जैसे माँ और बेटा, मान लीजिए बेटा है अमेरिका में बैठा हुआ, कैलिफोर्निया में है, और माँ उसकी यहाँ आबू में रहती है, ना? अब माँ को बच्चे से बहुत प्यार है, बच्चे को माँ से बहुत प्यार है, और बच्चा अचानक पढ़ने जाना पड़ा, है ना, अब माँ के विचार सारा टाइम क्या चलते रहते हैं बच्चे के बारे में, उसने खाना खाया होगा नहीं खाना खाया होगा, वो ऐसे किया होगा नहीं, अभी सोने का समय होगा सोया नहीं होगा, कभी कॉलेज गया होगा, है ना, सारा टाइम चलता रहता है, और बच्चे के विचार भी ये चलते हैं, मम्मी कैसी होगी, मम्मी ने काम किया होगा, मम्मी के कमर में दर्द रहता है, मम्मी के घुटने दर्द रहते हैं, है ना, मम्मी की ऐसी तकलीफ है, पता नहीं मम्मी कैसे चल रही होगी, है ना, तो आपस में दोनों कनेक्शन रहते हैं ना, बहुत दोनों एक दूसरे पर सोचते रहते हैं, तो अब संकल्प चलते चलते भावना का रूप ले लेते हैं, और वो भावना हालांकि यहां से 20,000 किलोमीटर दूर है दोनों, एक आबू में है एक कैलिफोर्निया में बैठा है, मतलब विश्व के दूसरे हिस्से पे है, तो दोनों के आपस में क्या चल रहे हैं, संकल्प चल रहे हैं, तो भावना, और भावना से वाइब्रेशन पैदा होते हैं, तो वाइब्रेशंस पैदा होते हैं, जो मां सोचती है बच्चे को पता लग जाता है, और जो बच्चा सोचता है मां को पता लग जाता है। अधिकतर क्या होता है कि बच्चा मां को, जैसे अभी मां फोन करती है बच्चे को, बच्चा क्या बोलता है, मम्मी मैं अभी आपके बारे सोच रहा था, मेरा दिल कर रहा था मैं आपसे बात करूं, आपका फोन आ गया, है ना, या कभी मां बैठी होती है तो उसके बच्चे का फोन आ जाता है, मां बच्चे के बारे सोच रही होती है उसका फोन आ जाता है, इसको क्या कहते हैं, टेलीपैथी, टेलीपैथी कहते हैं ना, पावर ऑफ वाइब्रेशंस भी कहते हैं। ये जो है एक बहुत बढ़िया तरीका है मतलब इसमें कोई डिस्टेंस की बात नहीं है, चाहे 5000 किलोमीटर बैठे हो, चाहे 10000 किलोमीटर बैठे हो, 20000 किलोमीटर बैठे हो, चाहे बच्चा यहां से आप अपने यहां शांतिवन से आबू रोड में पढ़ने के लिए गया हो, है ना, तो वो तो कितना है, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उसमें 5 किलोमीटर या 5000 किलोमीटर या 50000 किलोमीटर मायने नहीं रखता है। कितना भी डिस्टेंस हो, वो डिस्टेंस इजिली जहां वाइब्रेशंस होते हैं वहां ट्रेवल हो जाता है। अगर हम ऐसे रूप में देखें तो वहां तो संबंधी है, किंतु ऐसे जैसे आप सब हैं, हम आपस में संबंधी है कि अलौकिक रूप में संबंधी नहीं है, किंतु अलौकिक रूप में संबंधी है कि नहीं है, और पारलौकिक रूप में आत्मा के रूप में संबंधी है ना सभी। तो हम जब बाबा को ऐसी तरह से याद करते हैं, बाबा भी हमारा बाबा है ना, बाप है ना हमारा, जब बाप को हम इस तरह से याद करते हैं, मैं अपने को आत्मा समझ के परमात्मा बाप को याद करते हैं, अपने को ब्रह्मा कुमार समझ के ब्रह्मा बाबा को याद करते हैं, मतलब बाप दादा को याद करते हैं सूक्ष्म वतन में, तो क्या होता है, सूक्ष्म वतन कितनी दूर है हमसे, सूक्ष्म वतन कितनी दूर है हमसे, 50000 किलोमीटर, 1 लाख किलोमीटर, करोड़ों किलोमीटर दूर है ना, अरबों किलोमीटर दूर होगा ना, फिजिकली डिस्टेंस वाइज देखें तो अरबों किलोमीटर होगा ना, किंतु वो पावर ऑफ वाइब्रेशंस क्या काम करती है, जब हम अपने को आत्मा समझ के रहने लगते हैं, आत्मा समझ के व्यवहार करने लगते हैं, रियल ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी भाई बहन की तरह आपस में व्यवहार करते हैं, तो क्या होता है, हमारे जो भी हम सोचते हैं, हमारी भावना और बाबा की भावना क्या होता है, पावर ऑफ वाइब्रेशंस काम करने लगती है। बाबा वहां बैठा है और हम यहां बैठे, हमारे संकल्प बाबा को टच होते हैं और बाबा के संकल्प हमें टच होते हैं, तो ये पावर ऑफ वाइब्रेशंस काम करती है। तो हम भले कहीं भी दुनिया में कहीं भी हैं, किंतु बाबा से हम जुड़े हुए हैं, किससे, टेलीपैथी से, है ना, वाइब्रेशन से जुड़े हुए हैं। अगर हम अपने को आत्मा समझते हैं, अगर देहाभिमान स्थिति है, तो अगर जरा भी देहाभिमान है, जरा भी बॉडी कॉन्शियसनेस है, जरा भी रोल कॉन्शियसनेस है, जरा भी मटेरियल कॉन्शियसनेस है, हमारी बुद्धि संबंधों में कहीं गई हुई है, किसी और चीज में खोई रहती है, चीजों के पीछे लगे रहते हैं, तो हम बाबा से डिस्कनेक्टेड है, तो हम बाबा से उनकी जो वाइब्रेशंस है फील नहीं कर सकते, राइट। और जब हमारे पास इतनी एनर्जी आ जाती है, तो हम भी सारे विश्व की जितनी भी आत्माएं हैं, स्पेशली जो दुखी हैं, सुख वाले नहीं, जिनके पास अपना पैसा चीजें हैं उनके पास नहीं, जो आईसीयू में एडमिट है, सीसीयू में एडमिट है, है ना, जो मरने वाले हैं, है ना, दुख में है, बहुत परेशान में है, जिनके घर का बहुत बीमार है, जिनके ऊपर बहुत कष्ट आया हुआ है, वो भगवान को सच्चे दिल से याद कर रहे हैं। भले एक ज्ञानी है, किंतु उनके अंदर भी ये भाव रहता है, भले वो अपने को आत्मा नहीं बोलते हैं, आत्मा जानते नहीं है, तो भी जब सच्चे दिल से उनकी आहा निकलती है ना, और भगवान को सच्चे दिल से, तो वो भी कैच करते हैं वो वाइब्रेशंस, शांति के, प्यार, खुशी के वाइब्रेशन कैच करेंगे, और उनको हीलिंग होनी शुरू हो जाती है, उनको फायदा मिलता है, राइट। जिनकी जिनके कनेक्शन किसी और चीज में लगी है, उनका नहीं पहुंचेगा। तो एक्चुअली मनसा सेवा के भी क्लास बेसिकली मनसा सेवा के ऊपर है, तो पर मनसा सेवा कैसे होगी आगे भविष्य में, वो इसके ऊपर हम आगे भविष्य, अब थोड़ी देर में उस पर पहुंचेंगे। तो ये जो है हमारी भावना, ऐसे परिवर्तन होती है। तो संकल्प को, कोई भी संकल्प को हम गहराई से करें तो भावना बन जाती है, है ना। ये मान लीजिए मैंने 20 बार संकल्प किया तो 20 बार बिंदु लगा, और इसने भी 20 बार किया तो 20 बार बिंदु, दोनों के बीच में वाइब्रेशंस फ्लो हो गए, टेलीपैथी शुरू हो गई। अब यही भावना को मैं लंबा कर दूं, यही भावना को, यही वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छा है। जैसे एक माँ एक बच्चे को क्या देखती है, छोटा बच्चा जब होता है, माँ का जब बच्चा होता है 2 महीने का, 3 महीने का, 5-6 महीने का, 8 महीने का, 1 साल का, तो बच्चा कितना सिंपल होता है, कितना इनोसेंट होता है। बच्चे के पैर पे चींटी चलती है तो बच्चा मम्मी को बोलता है, मम्मी चींटी देखो, चींटी है ना, उसको हटाता नहीं है, उसके पैर पे चींटी चढ़ी हुई है, वो मां को बोलता, मम्मी चींटी मेरे पे चढ़ गई है, मेरे पैर पे चींटी है, तो ये उसकी मम्मी कितना उसको इनोसेंट समझती है, देखो ये बच्चा मेरा कितना कितना इनोसेंट है, कितना वो है, कितना भोला है, चींटी को मारता नहीं है, है ना, देखो चींटी को, मेरे को कह रहा है मम्मी चींटी है मेरे ऊपर। हम क्या करेंगे, हम चींटी को तुरंत हटा देंगे या मार देंगे, किंतु वो बच्चा चींटी को नहीं मारता है। जब भी कोई बात होती, बाबा बच्चा छोटी छोटी बात भी मम्मी को बताता है। फिर वही बच्चा जब 5 साल का हो जाता है, तो कोई माँ आती है, वो कहती है तुम्हारे बच्चे ने मेरे बच्चे को मारा, कहती क्या बात करती हो, तो मैं तुम्हारे बच्चे कैसे मार सकता है, वो चींटी नहीं मार सकता है, तो उसके मन में क्या, वो बार बार देखते हैं ना, बार बार चीजें देखती है, छोटी सी बात होती है वो कहता मम्मी ये, मम्मी ये, मम्मी देखो मकोड़ा जा रहा है कुछ, मतलब वो हर बात बता देगा। तो मेरे को नहीं, तो मेरे को बताता था, कुछ भी करता मेरे को बताता, उसने मेरे को बताया नहीं कैसे मारा मेरी बच्चे ने, कि तुम्हें कुछ भी नहीं मारा, तुम झूठ बोल रहे हो। तो ये वृत्ति, वो मां के अंदर जो भावना थी ना, उस भावना को लंबा समय रखते 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 क्या हो गया, एक सर्कल बन गया, एक वृत्त बन गया। अब उसी वृत्त में मां का, मां के विचार चलते रहते हैं, उसी वृत्त में मां के विचार चलते हैं। तो ये वृत्ति बन गई, इसमें हर समय संकल्प क्या है, उस वृत्ति से मां बाहर निकल नहीं पाती है। जब बच्चा 35-40 साल का हो जाता है, किसी का मर्डर भी कर दे, पुलिस आके उसको कहे उसकी मां को तुम्हारे बच्चे ने इसका मर्डर कर दिया, तो मां फिर भी क्या कहेगी, मेरा बच्चा तो कभी ऐसा नहीं कर सकता है, उसको ऐसे संस्कार ही नहीं है, वो चींटी नहीं मार सकता है, हालांकि वो उसने मारा है। पर मां के अंदर एटीट्यूड है। बाबा भी हमारा ऐसा ही है, बाबा जब हमें देखता है कैसे देखता है, बाबा ने हमको परम धाम में देखा, एकदम पावन सत्वप्रधान स्वरूप में देखा, और फिर स्वरूप में आधा कलप क्या देखा, हमको देवी देवता के रूप में देखा, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परम धर्म देखा, देवी देवता के रूप में सजे हुए देखा, कभी किसी को गलत करते हुए नहीं देखा, है ना, ऊपर से देखता रहता था। तो मां उसको, अब अभी हम गंदे हो गए ना, अभिकारी हो गए है ना, गुस्सा भी करते, सब कुछ करते रहते हैं ना, किंतु बाबा वो रूप नहीं देखता हमारा। बाबा कौन सा रूप देखता है हमारा, अनादि और आदि स्वरूप देखता है। जैसे एक मां 40 साल के बच्चे के में, बच्चे में भी अपने बच्चे में क्या देखती है, वही छोटा सा रूप, मुस्कुराता हुआ, भोला भाला रूप देखती है। ऐसी बाप भी क्या देखता है, भले हम कितने गंदे हो गए हों, बाबा को क्या लगता है, क्या लगता है कि मेरे तो ये वही पुराने है ना चमकते हुए सितारे हैं, है ना, वही देवी देवता है। जैसे एक बच्चा एक गिर जाए कीचड़ में, गिर जाए, छोटा बच्चा है, 1-1.5 साल का बच्चा कीचड़ में गिर जाए, गंदा हो जाए, तो मां, बच्चा तो रोने लगता है, मम्मी देखो मेरा कितना गंदा हो गया, मैं ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे, तो मम्मी क्या करती है, मम्मी को कीचड़ कीचड़ दिखाई देता है उसका, नहीं, मम्मी को वही सुंदर सा रूप उसका दिखाई देता है, तुरंत उसको पानी साफ करती, नहीं बेटा तू तो बहुत सुंदर है, तू तो बहुत सुंदर है, तू तो बहुत सुंदर है, देख अभी देख कितना सुंदर हो गया, है ना, पानी से रगड़ कर साफ करके उसको फिर, है ना, थोड़ा बता बदबू होती है उसमें, सेंटमेंट लगा के उसको खुशबूदार बना देती है, एकदम सुंदर बना देती है ना। तो ऐसे हमारा बाबा है, उसको कभी हमारा बुरा रूप दिखाई नहीं देता। हाँ, गंदगी प्रायः लगती है, जल्दी साफ करके चमका के फिर हमारे पे मुकुट वगैरह लगा के हमको तैयार कर देता है। तो बाबा को हमारा कभी नेगेटिव रूप नजर नहीं आता, इसलिए जब बाबा आता है यहां से बैठ के कितना प्यार से देखता है हमको, कौन सा रूप देखता है हमारा बैठ के, गंदे वाला रूप नहीं, वही चमकता हुआ रूप दिखाई देता है उसको ना, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण ही दिखाई देते हैं बच्चे, चमकते हुए सितारे, अभी बाबा आए थे ना, चमकता हुआ सितारा रूप दिखाई, चमक दिखाई देती है बाबा को, हर बच्चे के अंदर चमक ओरिजिनल रूप दिखाई देता है। तो भावना को जब लंबा कर देते हैं तो हमारी वृत्ति बन जाती है, तो भावना से वाइब्रेशन पैदा होते हैं और फिर वृत्ति बन गई, इस वृत्ति में आदमी ऐसे ही घूमता रहता है सर्कल में, है ना, विचार वही चलते रहते हैं, उस वृत्ति से वायुमंडल पैदा होता है। जब हमारी वृत्ति बन जाती है तो हमारे अंदर आसपास एटमॉस्फेयर पैदा हो जाता है, वायुमंडल पैदा हो जाता है, वातावरण पैदा हो जाता है, और वातावरण के असर में आके कर्म होते हैं। जैसे अभी मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे पास हार्ट के पेशेंट, हार्ट का जो प्रोग्राम होता है जिसमें हार्ट के पेशेंट्स आते हैं सारे इंडिया से, विदेशों से भी आते हैं, तो 50 हम पेशेंट बुलाते हैं एक बार में, साथ में उनकी युगल भी होती है। वो सालों से 7-8 बजे उठने वाले होते हैं, है ना, अब पहली बार हमारे पास आते हैं शांतिवन में, तो हम उनको कहते हैं आपको कल 4:45 बजे उठना है, तो 4:45 बजे हम आपको उठाएंगे, 4 बजे मेडिटेशन करना है। तो वो एटमॉस्फेयर के असर में आके, यहाँ का जो वायुमंडल है उसके असर में अभी तक 4:45 कभी उठे नहीं होते पूरे जीवन में, अब 4:45 बजे उठ के सबके सब आ जाते हैं क्लास में। हम कहते हैं आपको आज से चाय नहीं पीनी है, आज से आपको चाय नहीं मिलेगी, सालों साल वो चाय पीते आए हैं, है ना, और हम उनको बोलते हैं आज से चाय नहीं पीनी, तो चाय पीना तुरंत छोड़ देते हैं। घर में उन्होंने 1000 बार कोशिश की होती चाय छोड़ने की, चाय छोड़ नहीं पाते, किंतु वायुमंडल के असर में आके उनको वो परिवर्तन कर लेते हैं। तो अगर हम वायुमंडल के असर में आके हम एक बार ऐसा काम करते हैं जो हमें कहा जाता है, उससे इंप्रेशन बनता है। क्या बनता है उससे? इंप्रेशन। एक बार करने से इंप्रेशन। हमने को कहा सुबह पौने चार उठना, हम चार बजे मेडिटेशन करेंगे, वो चार बजे आ गए, उनको चार बजे आके अच्छा लगता है, नींद भी नहीं आती और अलर्ट होकर बैठते हैं, जो हम संकल्प देते हैं उस संकल्प पे विचार चिंतन करते हैं, उनको अच्छा महसूस होता है और फिर सारा दिन भी जागते रहते हैं, तो उनका इंप्रेशन बन जाता है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। अभी तक वो क्या सोचते हैं? ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता। अब जब क्या होता है बिलीफ, अब उनका क्या होता है, जब 10 लोग से आपस में बातचीत तो करते हैं, लोग आपको कैसा लग रहा है, आपको नींद तो नहीं आ रही है, आप कितने बजे उठते थे? मैं भी 7 बजे उठता था। आप कितने बजे उठते थे? मैं तो 7:30 उठता था। आज कैसा लग रहा है 4:15 उठ के? बहुत अच्छा लग रहा है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। अच्छा, फिर हम कहते चाय भी नहीं पीना, तो चाय नहीं पीना, ऐसे पानी पीना है ना, पानी पी के फिर आप स्नान कर लेना। वो सोचते हैं उनको ऐसा चाय पीने से स्नान ठीक होता है, अब सालों से उनको आदत थी चाय पी के स्नान करने की, अभी उनको क्या हुआ, हमने कहा आप गर्म पानी में नींबू डाल के हम आपको देंगे, शहद डाल के देंगे, आप वो पीना, तो उनके मन में बिलीफ सिस्टम क्या था, बिना चाय के पेट साफ नहीं होगा। किंतु जब हम कहते नहीं ऐसे करना, तो वो क्या होता है, उनका पेट साफ हो जाता है। तो फिर आपस में पूछेंगे, अच्छा आपका बिना चाय के पेट साफ हो गया? साफ हो गया। मेरा अच्छा आपका क्या हुआ? आपका साफ हुआ? मेरा भी साफ हो गया, है ना। फिर उससे पूछते हैं आपका साफ हुआ? आपका भी साफ हुआ। तो ये अभी पहले बिलीफ सिस्टम था चाय से हमारा पेट साफ, अभी क्या बिलीफ बन गया, नींबू पानी से भी पेट साफ हो जाता है, है ना। तो ये बिलीफ सिस्टम है, 10 लोग उसको रीइन्फोर्स कर देना वही बात को, तो ये हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है। समझ रहे? बिलीफ है ना, समझ रहे? इंप्रेशन और बिलीफ। और बिलीफ सिस्टम जब बन जाता है, तो अब जैसे बिलीफ सिस्टम आजकल क्या बिलीफ सिस्टम है, जैसे मैंने चाय की आपको एग्जाम्पल दी, ऐसे ही लोग क्या कहते हैं, बिलीफ सिस्टम क्या है, मैं जा रहा था काम पे, रास्ते में बिल्ली ने रास्ता काट दिया, काम बिगड़ गया। अब बिल्ली के रास्ता काटने से काम बिगड़ता है क्या? बिल्ली अपने काम से जा रही थी चूहा पकड़ने के लिए, मैं जा रहा था अपने काम से, तो बिल्ली का मेरे से क्या कनेक्शन है? कहते किसी ने छींक मारी, काम बिगड़ गया। छींक मारने से उसको छींक आ रही थी, उसका मेरे से क्या कनेक्शन है क्या? तो ये बिलीफ सिस्टम है ना, हमने उसका मुंह देखा, आज काम रास्ते में निकले, घर से बाहर निकलते उसका मुंह दिखाई दिया तो काम बिगड़ गया। अरे तुमने सबसे पहले तो अपना मुंह देखा था शीशे में, कि उसका मुंह पहले देखा था। तो मतलब ये हमारे बिलीफ सिस्टम है ना, फिजिकल बिलीफ सिस्टम है ना हमारे, तो ये बिलीफ सिस्टम होते हैं, ऐसे बिलीफ सिस्टम बनते हैं। अब चाय पीने से पेट साफ क्यों होता है, मैं आपके लिए बता देता हूं चाय पीने से क्यों होता है, कि चाय, आप सभी चाय तो पीते होंगे ना, है ना। तो चाय पीने से क्या होता है, हम चाय कैसे पीते हैं, कभी भी चाय से मुंह से मुंह लगा के पी जाते हैं क्या, पूरा गिलास या कप घूट घूट करके पीते हैं, एक घूट पिया फिर प्याला हटाया, फिर दूसरा घूट पीते हैं, फिर तीसरा घूट पीते हैं, है ना। और जब एक एक घूट करके पीते हैं, तो सीधा चाय हमारे छोटी आंत में जाती है, पेट में नहीं जाती है। जब कोई भी चीज हम सिप करके पियेंगे ना, तो वो छोटी आंत में जाएगी, और छोटी आंत में जाएगी तो पेट साफ करने में मदद करेगी। बात चाय की नहीं है, ऐसे ही अगर पानी आप चाय की तरह पियो, एक एक घूट करके पियो आराम से, वो छोटी आंत में जाएगा, पेट साफ हो जाएगा, है ना। तो ये मतलब चाय की बात नहीं है पेट साफ करना, ये साफ करना किसकी आदत है, अगर पानी आप ऐसे करके पी लेंगे तो पेट में जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। अगर घुट करके पियेंगे तो पेट छोटी आंत में जाएगा, उससे पेट साफ हो जाएगा, तो सेम असर होगा, है ना। तो इसलिए ये बिलीफ सिस्टम खत्म हो गया, पुराने वाला जो सालों साल बिलीफ सिस्टम था वो खत्म हो गया। तो ऐसे ही हमारे बिलीफ सिस्टम नए बनते हैं, है ना। और जब वही चीज को हम बार बार करते हैं उसी चीज को, तो हमारे संस्कार माना आदतें बन जाती हैं। तो इस तरह से हमारे क्या बनते हैं, पहले बनती है हमारी संकल्प से भावना बनती है, बार बार करें वही संकल्प गहराई से करें तो भावना बन गई, भावना से वाइब्रेशन बन गए, और जब उसी भावना को हमने लंबा कर दिया कुछ महीने कुछ दिन 15 दिन महीना एक 6 महीना एक साल, तो वो आपका वृत्ति बन गई। जैसे हम बाबा के बच्चे बने, पहले हम सब अपने को देह अभिमानी समझते थे, धीरे धीरे रोज अभ्यास करते 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 हम क्या बनते जा रहे हैं, हमारी वृत्ति कैसे बनती जा रही है, आत्मिक वृत्ति बनती जा रही है ना। तो आत्मिक वृत्ति से आत्मिक वायुमंडल रूहानी वायुमंडल बनता जा रहा है। सेंटर में रूहानी वायुमंडल क्यों होता है, क्योंकि सारा दिन बहने क्या करती है, वहां पर जो भी आते हैं सेंटर पे भाई बहने आते हैं तो सारा दिन कैसा वातावरण रहता है, किस वृत्ति से आते हैं, हम आत्मा है आपस में भाई भाई हैं, तो उसी व्यवहार से क्या होता है, सारा सेंटर का वातावरण कैसा हो गया, रूहानी हो जाता है। अब रूहानी वायुमंडल में आके जो भी बहन जी बोल देती है, उसको बोल देती है, वो तुरंत बच्चे की तरह कर लेता है, झाड़ू लगा दो, भाई को बोलेंगे झाड़ू, उसने कभी घर में झाड़ू लगाया नहीं होगा, किंतु वो घर सेंटर में झाड़ू लगाता है, पोछा लगा दो पोछा भी लगा देगा, घर में कभी नहीं लगाएगा, बीवी बोल दे उसको पोछा लगा दो नहीं लगाएगा, किंतु बहन जी बोलेगी तो क्या करेगा, पोछा भी लगा देगा। तो वायुमंडल का असर क्या हुआ, उसमें जो भी कह देंगे हम उस वायुमंडल के असर में कर देंगे। तो ये वायुमंडल का असर होता है, ठीक है। और वायुमंडल से, वायुमंडल के असर में हम फिर क्या करते हैं, एक बार काम करते हैं तो ब्रीफ एक इंप्रेशन हो गया, उससे 10 लोगों ने आपको री इन्फोर्स कर दिया, बार बार बोल दिया तो आपका बिलीफ बन गया, और उसी को बार बार किया तो आपका संस्कार माना आदत बन गई, स्मृति बन गई, और जैसी स्मृति वैसी स्थिति, और स्मृति से समर्थ ही आती है, जो अभी दो दिन पहले हमने मुरली में सुना, स्मृति से क्या होती है, समर्थ ही आ जाती है, मतलब स्मृति स्वरूप बनने का ये तरीका है, खाली सोचता स्वरूप नहीं बनना है, क्या बनना है, स्मृति स्वरूप बनना है ना। तो अभी जो और एक बार स्मृति बन गई, बिलीफ सिस्टम बन गया, तो बुद्धि का काम खत्म, अब हम ऑटो मोड में चले गए, अब बुद्धि काम नहीं करती है, अब बुद्धि काम करना बंद कर देती है। जैसे कोई स्मोकर है, उसको पता है स्मोकिंग पे, सिगरेट पे लिखा रहता है, बीड़ी पे लिखा रहता है, ये इससे कैंसर होता है, फोटो भी लगी होती है कैंसर की, तो भी क्या होता है, अब बुद्धि वो भले फोटो देखता है, उसको जब वो लगती है इच्छा होती है पीने की, तो क्या होता है, तुरंत जेब से बीड़ी निकल, सिगरेट निकलती है और लाइटर निकलता है, जला के पीना शुरू कर देता है, वो उसकी उसमें बुद्धि काम नहीं कर रही कि इससे कैंसर हो जाएगा बाद में जाके, है ना। शराब पीने वाले को भी ऐसे ही होता है। तो ये संस्कार पड़ गया ना पुराना, अब जो हमारे इसमें बुद्धि काम नहीं करेगी, तो इसी तरह से अभी जो हमारे संस्कार ये पड़े हैं, जो हमारी टीम बनी है, हमारी जो टीम अभी किस आधार पे है, फिजिकल बनी है, क्योंकि हम सालों से 25 साल से अपने को देह समझते आए हैं, और देह समझते समझते हमारा क्या हो गया, देह समझते समझते हमारी जो जो भी हमारे जो संकल्प भी देह के बारे चलते हैं, देह के संबंधों के बारे में चलते हैं, देह के संपर्क के बारे में चलते हैं, देह के पदार्थों के बारे में चलते हैं, प्रॉपर्टी मकान जायदाद कार घर का बैंक अकाउंट उसी के बारे में चलते हैं, और देह के स्वभाव, देह के स्वभाव क्या है, 5 विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और देह के संस्कार आदत क्या है, आलस्य, सबसे बड़ा आलस्य संस्कार है देह का, आदत है देह की वो आलस्य है, अलबेलापन, दूसरे में दोष निकालने की आदत, बदला लेने की भावना, शक अनुमान चिंता भय जल्दीबाजी और ईर्ष्या द्वेष, ये जो है 10 संस्कार मुख्य जो है देह के आदतें हैं, ऐसे तो इनके आगे फिर 10-10 और हैं, तो 100 हो जाते हैं ना, 115 हो गए टोटल ना, तो इनकी बड़ी सेना बन जाती है, तो ये हमारे देह के संस्कार हो जाते हैं। तो इसी बारे में बुद्धि चलती रहती है, नींद थोड़ी कम आएगी, अरे मौका लगेगा पीछे को बैठ जाते हैं, वहां जाके थोड़ा पीछे जाके सुस्ता लेंगे, आंख बंद कर लेंगे, है ना, मतलब पीछे बैठ जाएंगे, पीछे बैठने का मतलब क्या होता है, अधिकतर आगे बैठे तो अलर्ट बैठेंगे, पीछे बैठेंगे तो क्या होगा, सोने की कोशिश करेंगे ना, आगे तो कोई देख के बताएगा आप अलर्ट होकर बैठे हो ना, तो मतलब हमें आलस एक नेचर है, ब्राह्मणों का भी सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, आलस, है ना। तो इस तरह से हमारे देहभान के ये इसी के बारे संकल्प चलते रहते, सारा दिन चिंता चलेगी, ये काम होना था, ये काम करना था, ऐसे करना था, डर लगेगा, शक अनुमान आएगा, दूसरे में दोष दिखाई देंगे, बदलने की भावना चलेगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें बाबा आया है हमको पतित से पावन बनाने के लिए, है ना। अब हमको वो पतित से पावन कब बनाता है, कैसे बनाता है, ऊपर से हमें पवित्रता दे देता है क्या, बाबा पहले ज्ञान सागर है फिर पतित पावन है, ज्ञान सागर है पहले फिर पतित पावन है ना, हमें ज्ञान दे के पतित से पावन बनाता है ना। तो बाबा हमें ज्ञान दे रहा है, ज्ञान माना क्या, ज्ञान माना सत्य की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ, सत्य क्या है, अभी तक हम किसमें जी रहे थे, असत्य में जी रहे थे, जो हम थे नहीं वो अपने को समझ करके जी रहे थे, जो हमारे थे नहीं उनको अपना समझ के जी रहे थे, जो चीजें हमारे साथ में लेके नहीं आए थे साथ में लेके नहीं जाएंगे उनमें अपना टोटल टाइम लगा रहे थे, जो हमारा स्वभाव संस्कार नहीं था उसको ही अपना स्वभाव संस्कार समझ रहे थे, जो चीज असत्य का डेफिनेशन क्या है, सत्य की डेफिनेशन क्या है, सत्य माना जो कभी ना पैदा होती है ना कभी मरती है, सत्य माना जो ना कभी पैदा होता ना कभी मरता है, एटर्नल है, अमर है, अविनाशी है, दूसरी परिभाषा सत्य का भी परिवर्तन नहीं होता है। तो देह तो पैदा होती मर जाती है, देह के संबंधी भी आज पैदा हुए कल मर जाते हैं, देह के संपर्क भी आज बने कल टूट जाते हैं, देह के पदार्थ भी आज हैं कल नहीं रहते हैं, देह का स्वभाव भी आज है मेरे अंदर गुस्सा आता है, कल मेरे पास नहीं है, आज कोई विकार है आज कल नहीं है, सुबह है शाम को नहीं है, देखिए संस्कार भी अभी हैं, अभी अभी हैं, अभी अभी नहीं है। तो सत्य सदा ही रहता है। सत्य क्या है ये बाबा हमको समझाता है, सत्य क्या है बताओ, सत्य क्या है? सत्य चार चीजें सत्य है ना, एक तो बाबा सत्य है, सदा ही एक जैसा है, सदा ही ना पैदा होता है ना मरता है, अटर्नल है। दूसरा आत्मा भी सत्य है ना, तीसरा आत्मा परमात्मा का संबंध भी सत्य है, सदा ही है और सर्व संबंध है, और डी ड्रामा, ड्रामा भी सत्य है, अविनाशी अविनाशी है, बना बनाया है ना। तो ये चार चीज सत्य है, यही ज्ञान है। तो बाबा ये सत्य की समझ हमें दे रहा है, बच्चे तुम देह नहीं, तुम आत्मा हो, तुम उसकी संतान नहीं हो, तुम उनकी संतान, देहधारियों की संतान नहीं, तुम मेरी संतान हो, तुम्हारे सर्व संबंध मेरे साथ हैं, माता पिता शिक्षक सतगुरु बंधु सखा साजन सर्जन बच्चा, ये नौ संबंध तो मुख्य हैं, कि तू हर संबंध तुम मेरे साथ निभा सकते हो, जो भी संबंध हर जगह और हर समय निभा सकते हो, हर समय मुझसे अनुभव कर सकते हो। और डी फॉर ड्रामा, ड्रामा माना संसार रूपी नाटक में हर आत्मा एक्टर है, और हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है। और शिव बाबा, बाबा कहता मैं इसका डायरेक्टर हूं, क्रिएटर भी हूं, डायरेक्टर भी हूं और सुप्रीम जस्टिस भी हूं, और हर आत्मा को उसके इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा हूं। इसलिए अब तक जो कुछ हुआ अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ कि बुरा हुआ है? कोई व्यक्ति आपकी इंसल्ट रोज करता है, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ है? कोई आपको रोज गाली देता है, इच्छा अच्छा हुआ कि बुरा हुआ है? बोलो क्या समझते हैं? कर्मों के अनुसार नहीं, कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार। 100 साल पहले मैंने कभी कभी मैं एग्जांपल देता हूं, 100 साल पहले अगर आप किसी ने आपसे 10 रुपया उधार लिया और आपने उसको वापस नहीं दिया, इस जन्म में वो आपका बच्चा बन के आएगा, या आपका दोस्त बन के आएगा, बिजनेस पार्टनर बन के आएगा, या माता पिता बन के आएगा, भाई बहन बन के आएगा, और इस जन्म में आपको 10 रुपये देने पड़ेंगे उसको वापस, साथ में ब्याज भी देना पड़ेगा। 100 साल का ब्याज कितना होता है पता है आपको? कितना ब्याज होता है? 4,19,00,000 रुपया होता है। आप लगा के देखना, 20 बार डबल डबल कर देना, 20 बार डबल डबल करेंगे ना तो ये आंसर पे पहुंच जाएंगे, 20 बार डबल डबल हो जाता है। तो आपने सोचो, आप 100 साल पहले आपने किसी को 2 गाली दी थी तो कितनी गाली मिलेंगी अभी आपको? आपने 2 बार किसी की इंसल्ट की थी, कितनी बार इंसल्ट होगी आपकी? अगर आपने 1 बार भी बोल दिया बीच में तो क्या होगा? आपने बोल दिया आप मेरी इंसल्ट क्यों करते हो तो क्या होगा? पेनल्टी लग जाएगी। आपके किसी ने 5,00,000 रुपये मार लिए, वापस नहीं दे रहे, और आपने अभी उसको कहा मेरे 5 लाख वापस दो नहीं तो मैं कोर्ट में केस करूंगा, आपने कोर्ट में केस कर दिया, तो 5 लाख तो वापस नहीं किया उसने, कि तो कोर्ट 10 साल कोई केस चलेगा तो वकील ही 4 लाख तो वकील ही ले लेगा 10 साल में ना, है ना? और आना जाना खर्चा अलग, 10 साल की टेंशन अलग, तो कितना हो गया? पेनल्टी लगी नहीं लगी? 5 लाख तो वो तो गए, और 5 लाख 10 लाख और ऊपर खर्च हो गए, तो 15 लाख खर्च हुए नहीं हुए? इसलिए इस समय कभी भी किसी को भी कोई गाली दे, इंसल्ट करे, कुछ भी करे, उसको बोलने का नहीं, समा लेना है, सहन करके समा लेना है। कोई 5 लाख रुपये मार ले, 10 रुपये 1,00,000 रुपये मार ले, कोई हर्जा नहीं है। क्यों मारे उसने पैसे? क्योंकि आपने उसके पहले 10 रुपये मारे हुए हैं, ठीक है? कितने रुपये मारे हुए हैं? 10 रुपये का ब्याज कितना हो गया? 10 लाख, है ना? 50 साल पहले मारे होंगे, अब 10 लाख हो गया, देना पड़ेगा। समझ रहे? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऊपर से जा रही बात। कोई इंसल्ट करे, गाली दे तो क्या करोगे? अच्छा हुआ बुरा हुआ उसको नमस्ते करना, भाई साहब अच्छे से अब मैं बैठ जाता हूं, आप आराम से गाली दो, कोई हर्जा नहीं, ठीक है? कोई इंसल्ट करे आराम से बैठ जाओ, सुनो उसकी बात। मेरा तो ये प्रिंसिपल है कि कोई मुझे तंग करता है तो मैं उसकी बात बहुत प्यार सुनता हूं, सबसे ज्यादा ध्यान उसी का रखता हूं। तो मुझे पता है इससे मेरा हिसाब किताब बाकी है, तो जितनी जल्दी पूरा हो जाए उतना अच्छा है। तो सुना आपने? तो ये जो है, जो हुआ अच्छा हुआ, ड्रामा में कोई दोषी नहीं है। ब्राह्मणों का पुरुषार्थ कहां के रुक जाता है? जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, मेरे साथ जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है, मैं इतना करता हूं, इतना करती हूं, मैं तो इतना करती हूं, मेरे साथ सब उल्टा ही करते हैं ना, तो ये गड़बड़ हो जाती है। तो जो हुआ अच्छा हुआ, और जो हो रहा है अभी हम बाबा की गोद में बैठे, ब्राह्मण हम ना बाबा की गोद में बैठे, बाबा हमको गोद में बिठा के राजयोग सिखा रहा है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहा है, हमको पावन सतोपदान फरिश्ता बना रहा है, फरिश्ता से देवता बना रहा है, तो हम बाबा की गोद, बाबा हम सर्व संबंधी है हमारा, हर संबंध की अनुभूति करें, और जो होने वाला है कल क्या होने वाला है बहुत अच्छा, क्योंकि अब हम बीज ठीक है हमारा, संकल्प ठीक है, और फिर हम बीज ठीक है तो उसके अनुसार हमारा फल भी अच्छा ही होगा, और परसों क्या होगा उससे भी अच्छा, और भविष्य में क्या होगा उसकी तो बात ही मत पूछो, है ना, हम सोने 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 हीरे के महलों में रहेंगे, है ना, कंचन काया होगी, है ना, अभी 20% ऑक्सीजन है, वहां पे 50% ऑक्सीजन होगी, वहां कोई मच्छर नहीं होगा, मक्खी नहीं होगी, कॉकरोच नहीं होगा, सांप नहीं होगा, बिच्छू नहीं होगा, है ना, कोई भी कीटाणु नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, और हमारी हमारी स्किन कैसी होगी, हमारा हमारा बॉडी कैसे लाल होगी, एकदम से लाल, है ना, 20% में भी लाल लाल है ना, तो 50 में कितनी लाल होगी सोचो, है ना, 50 में कितनी लाल होगी, कंचन काया होगी ना, तो ऐसा हमारा वातावरण होगा बढ़िया, और 25 साल हमको कमाना नहीं पड़ेगा, तो कितना हमारे सुख के कितने सुख के बाजे बजने चाहिए। अब ये जो हमें ये संकल्प जो ABCD, जिसे मैं ABCD कह देता हूं, आत्मा बाबा कनेक्शन ड्रामा, अब ये संकल्प है जो बाबा ने हमको नए संकल्प दिए हैं, अब इस एक एक संकल्प को गहराई से जाओ, भावना बनाओ, प्रोसेस वही टीम, है ना, ये मुरली है, मुरली में चार ही चीजें होती हैं, मुरली में चार ही बातें होती, देखो क्या होता है, दही मानी बनो, बच्चे अपने को आत्मा समझो, फिर बाबा क्या कहता है, परमात्मा के बारे में बताता है, संबंध बताता है, एक एक संबंध की बात बताता है, बाप टीचर सतगुरु, कभी बाबा सखा का रूप, कभी बाबा साजन का रूप के बारे में बात करता है, बाबा कभी बच्चे के रूप में बात करता है ना, बलिहार जाओ अपना सब कुछ मुझे बारिश बना लो, है ना, तो एक एक संबंध की बाबा एक्सप्लेनेशन देता है, और फिर ड्रामा के बारे में, सृष्टि के आदि मध्य अंत के बारे में बताता है। तो हम अगर एक एक बात को बहुत गहराई से, बाबा ने जो संकल्प मुरली के, जो मुरली में जो एक एक बात है ना, उसमें 7 बातें होती हैं एक मुरली के महावाक्य में, मतलब एक तो मुरली के हर महावाक्य में बहुत गुह्यता होती है, मतलब बहुत गहराई होती है, मुरली का हर वाक्य महावाक्य बहुत उसमें राजयुक्त होता है, उसमें बहुत सारे क्या होते हैं सीक्रेट्स होते हैं, और मुरली के हर महावाक्य रहस्ययुक्त होता है, उसमें बहुत सारे सस्पेंस होते हैं, और मुरली के हर महावाक्य में बहुत सूक्ष्मता होती है, मुरली के हर महावाक्य महीनता होती है, बहुत बहुत रिफाइंड, बहुत महीनता होती है, बहुत गहरा, मतलब गहराई अलग है महीनता अलग है, और फिर मुरली का हर महावाक्य अमूल्य होता है, ये 7 बातें हैं, उसी मुरली के महावाक्य आपके लिए अलग हो सकता है, मेरे लिए उसका मीनिंग अलग है, 700 करोड़ आत्माओं के लिए उसका मीनिंग अलग है, इवन बाबा के अगर 15 लाख बच्चे हैं वो सेम मुरली 15 लाख बच्चे सुनते हैं, किंतु उस 15 लाख में से सबकी प्रॉब्लम अलग अलग है, समस्याएं अलग अलग है, उसी 4 पेज की मुरली में सबकी प्रॉब्लम्स के रोज के आंसर होते हैं, वही 4 पेज वही मुश्किल से 50 महावाक्य होते हैं, 50-60 महावाक्य होते हैं, उस 60 से 15 लाख लोगों की सोल्यूशन हो जाते हैं, तो अलग 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 मतलब होगा ना उसका, तो उसकी गुह्यता, उसकी राज, उसके रहस्य, उसकी महीनता, उसकी सूक्ष्मता, उसकी अमूल्य भाव, उसका जो है ना वो हमें गहराई में, सिंपल मुरली पढ़ने से नहीं मिलता है, उसकी हमें गहराई में जाना है, तो हर जो मुरली में महावाक्य है उसकी संकल्प, वो संकल्प है बाबा का, सत्य संकल्प है, उसकी गहराई में जाओ। अभी हम आधा कल्प किसमें गए, असत्य संकल्पों की गहराई में जाकर के हम कैसे बन गए, विकारी बन गए, गंदे बन गए, दुखी बन गए, तमो प्रधान बन गए। अभी जो बाबा सत्य संकल्प दे रहा है मुरली में, उसको हम गहराई में जाएं, गहराई में जाएं तो मनन चिंतन करें, मनन माना रिवाइज करो, चिंतन माना गहराई, और गहराई में जाओ, मुझे तो ये बनना ही है, कैसे भी करके बनना। तो ये जो है, जब हम जैसे बाबा ने कोई भी, जैसे आज बाबा ने बात की, अपना फालतू समय बर्बाद नहीं करो, आज बाबा ने अंतर्मुक्ता पे बात की, अंतर्मुक्ता माना क्या, सोल कॉन्शियसनेस, तो मैं सोल कॉन्शियस हूं, मैं आत्मा हूं, ये महसूस हो रहा है, इसकी गहराई में जाओ, खाली मैं आत्मा सोचना नहीं है, मैं आत्मा, मैं कौन सी आत्मा हूं, मेरा अनादि अनादि स्वरूप क्या है, उसको मैं हूं ही पावन सत्व प्रधान आत्मा, अभी गंदा हो गया, गंदी आत्मा हो गई, इसमें विकार आ गए, ऊपर मैल लग गई है, किंतु मैं ओरिजिनली तो वही हूं ना, और बाबा मुझे उसी रूप में देख रहा है ना, तो उस स्मृति को इमर्ज करो बार 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 इमर्ज करो, तो भावना हो जाएगी। क्योंकि मैं जब कट चढ़ी हुई आत्मा, खाद पड़ी हुई आत्मा बाबा की पावर को कैच नहीं कर सकती, क्योंकि मैं ये स्मृति जागृत करूं कि मैं तो पावन सतोपदान आत्मा हूं, ओरिजिनल स्वरूप मेरा पावन है, पवित्र है। तो जितना मैं इस ओरिजिनल स्वरूप को जागृत करूं, इस स्मृति को जागृत करूं, और मैं तो परमात्मा की संतान हूं, वो मेरे सर्व संबंध उसके साथ हैं। एक संबंध की गहराई में जाएं, उस भावना से मां का संबंध क्या है, शिव बाबा कैसे ब्रह्मा के द्वारा मुझे मां की पालना दे रहा है, शिव बाबा बाप के रूप में कैसे पालना दे रहा है मुझे, शिव बाबा टीचर के रूप में मुझे कैसे पढ़ा रहा है, शिव बाबा सतगुरु के रूप में मुझे कैसे गति सदगति दे रहा है, शिव बाबा मुझे बंधु के रूप में मेरा सब बोझ कैसे ले लेता है, लौकिक अलौकिक बोझ कहते हैं ना, बाबा मुझे सब अपने बोझ मुझे दे दो, बड़ा भाई बंधु हुआ ना बड़ा भाई, तो बड़े भाई के रूप में बाबा कहते हैं बच्चे मुझे सारा बोझ मुझे दे दो, सखा के रूप में मेरे सारी जो भी प्रॉब्लम्स है बाबा कहता है तुम मुझे दे, तुम मुझे सुना दो, जो तुम किसी को नहीं सुना सकते मुझे सुना दो। साजन के रूप में बाबा क्या कहता है, बाबा क्या करता है, हमको सजा देता है, दैवी गुणों से सजाता है। सर्जन के रूप में हमारा ऑपरेशन कर देता है, जो भी विकार अंदर हैं, देह का भान है, देह के संबंधों का भान है, देह के विकारों का भान है, देह के पदार्थों का भान, उसको ऑपरेशन करके बाहर निकालता रहता है, और हम एक्सपर्ट हैं, वो निकालता रहता है, हम डालते रहते हैं नहीं, रावण के सिर काटते रहते ना, तो हम लोग डालते रहते वापस, तो वो हमें निकालना, अभी निकाला तो फिर रखना चाहिए ना, बार बार डालना नहीं चाहिए, उसके लिए हमें निरंतर ये अभ्यास चाहिए। संकल्प को गहराई में जाओ, भावना में परिवर्तन करो, क्योंकि वैध संकल्प ही सबसे बड़ा खतरनाक चीज है ना, बीच में टाइम मत दो अपने आप को कुछ और देखने का सोचने का। भले हम कुछ भी काम करते हैं, आप, मैं मेडिकल प्रोफेशन में हूं, आप कुछ और काम करते हैं, आप घरों में काम करते हैं, इंजीनियर हैं, बिजनेसमैन हैं, कुछ भी काम करते हैं आप, फिर भी हम हर काम करते भी बाबा की याद में रह सकते हैं। जो बाबा ने संकल्प दिया उसको हम बार बार अटेंशन रखें, है ना। मुझे याद आता है बाबा ने, दादी ने बड़ी दादी के पास हम रोज जाते थे सुबह सुबह ना, दादी ने मुझे कहा हुआ था कि मुरली के बाद मुझे रोज मिलके जाओ, 5 मिनट मेरे पास बैठ के जाओ, तो हम दादी के पास रोज जाते थे। तो दादी जी मुझे कहती थी, तो मैं, दादी ने एक दिन मुझे पूछा अष्टरत्न कौन बनेंगे गुप्ता जी, मैंने दादी मुझे तो नहीं पता आप बताइए, तो दादी कहती है आप बताओ ना, आपको तो पता है, आपको तो मुरली में बहुत मुरलियां पढ़ते हो, अव्यक्त भी पढ़ते हो, साकार भी पढ़ते हो। तो मैंने कहा नहीं दादी आप बताइए, तो दादी ने कहा जो जिनको हर श्वास में बाबा और बाबा की मुरली याद रहती वो अष्टरत्न बनते, जिनके हर श्वास में बाबा और बाबा की मुरली याद रहती है वो अष्टरत्न बनते। हम दिन में 16,000 सांस लेते हैं दिन और रात मिला के, 14 पर मिनट के हिसाब दिन में और 10 पर मिनट के हिसाब से रात में, आप खुद भी गिनेंगे ना तो आपको मिलेगा 16,000 सांस मिलेंगे। और मैंने कहा दादी जो, फिर दादी ने कहा अच्छा 108 कौन बनते हैं, तो दादी ने कहा कि जो कम से कम दिन में 100 बार बाबा और बाबा की मुरली को याद करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, निरंतर याद। देखिए हम जो पहले थे काम चिता पे थे, आज की मुरली में भी था, आज सब दुनिया में काम विकार में जाते हैं, सबको काम विकार के संकल्प चलते हैं, हम काम चिता पे थे, काम विकार से सब विकार पैदा होते हैं, काम से क्रोध पैदा होता है, क्रोध काम माना देह दृष्टि, किसी को देह के रूप में देखना, देह से आकर्षण पैदा होना, किसी को भी देहवान से देखना यह काम विकार है, किसी को देहवान से देखते हैं तो आकर्षण पैदा होता है, चाहे अपने आप को देखें दूसरों को देखें, इससे ही फिर क्रोध पैदा होता है, इसी से लोभ पैदा होता है, इसी से मोह पैदा होता है, इसी से अहंकार पैदा होता है, और बहुत सारे बाल बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो पहले हम काम चिता पे जल रहे थे, अब बाबा ने क्या किया, काम चिता से उठा के हम ज्ञान चिता पे बिठा दिया। चिता निरंतर होती है, चिता ये नहीं हो थोड़ी देर है थोड़ी देर बुझ गई, थोड़ी देर है थोड़ी, उसे चिता नहीं कहते, चिता निरंतर होती है। तो ज्ञान का मनन चिंतन मंथन सिमरन सारा दिन चलना चाहिए, सारा दिन चलना चाहिए, अंदर अंदर चलते रहना चाहिए। मैं तो वो एग्जाम्पल दिया करता ना, हमेशा लव लेटर वाली बात करता ना, मुरली क्या है बाबा की, लव लेटर है ना, लव लेटर कहां रखते हैं, क्या रखते हैं, देखो ये मैं रखता हूं ना यहां पे दिल के पास, ये बाबा की मुरली ना आज की, तो लव लेटर कहां रखते हैं, हमेशा दिल के पास रखते हैं, है ना, और पढ़ते कभी हैं, कब पढ़ते हैं, आसपास पहले देखते हैं कोई है तो नहीं, फिर चुपचाप छिपा के निकालते हैं, वो यूं निकालते हैं और एक एक लाइन पढ़ते हैं, मुस्कुराते हैं, फिर सामने से कोई आ गया तुरंत छुपा लेते हैं, और फिर सारा टाइम यही सोचते रहेंगे उसने मेरे लिए क्या लिखा। वो लिखता है तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम तो चांद जैसे हो, तुम तो ऐसे हो, तुम तो ऐसे हो, तुम तो ऐसे हो ना। और मेरे को लोग घर में बोलते हैं, बाहर बोलते हैं तुम तो ये बेकार आदमी हो, तुम तो शक्ल तुम्हारी कैसी है ना। वो तो चांद कहता है मेरे को, है ना वो तो इतना सुंदर मेरी इतना खान करता है, तुम तो ऐसे हो ऐसे हो ना। तो बाबा मेरे को क्या बोलता है, तुम तो मस्तक मणि हो, तुम तो नूरे रतन हो, है ना, तुम्हें तो सारा दिन मेरे को तुम्हारे द्वारा कुछ दिखाई नहीं देता है, तुम ही तुम हो, है ना। तो बाबा मुझे इतना प्यार करता है और मैं क्या करता हूं, तो मुझे उसकी याद आती रहती है। बाबा कहते हैं तुम्हारी याद कैसी होनी, सताने वाली याद होनी चाहिए। कैसी याद होनी चाहिए, याद करने वाली क्या सताने वाली, सताने वाली याद होनी चाहिए। तो ये याद मतलब फिर क्या, फिर जैसे मौका लगता है फिर क्या करते हैं, अभी कोई नहीं है तुरंत निकालते जेब से ना, फिर दूसरी लाइन पढ़ते हैं, फिर मुस्कुराते हैं, फिर सारा टाइम वो मन में घूमती रहती, दिल में घूमती रहती है। तो मुरली से इतना प्यार होना चाहिए, ये मुरली हमारा होमवर्क है, यही मुरली श्रीमत है, इसी के एक एक लाइन का मनन मना रिवाइज करो तो उससे भावना पैदा होगी, चिंतन मन और गहराई में जो और गहरी भावना पैदा होगी, तो बाबा के हम संकल्प कैच करने लगते हैं, बाप दादा के हम प्यार को कैच करने लगते हैं। बाप दादा जो मां के रूप में पालना करता है ना, मां के रूप में बाबा हमको दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट गिफ्ट गिफ्ट में देता है, दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट। और दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट ऐसी लिफ्ट है जिसमें आप बैठ जाओ, आत्मा सूक्ष्म शरीर माना पवित्र बुद्धि पवित्र मन के साथ इसमें बैठ जाए लिफ्ट में, तो एक सेकंड में बाप दादा की गोद में पहुंच जाती है, सूक्ष्म वतन में पहुंच जाती है। लिफ्ट में सूक्ष्म वतन नहीं उतारती है, कहां उतारती है, सीधा बाबा की गोद में उतारती है ना। एक होता है सूक्ष्म वतन उतार दिया, फिर बाबा कहां बैठा ढूंढते रहो, है ना, ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, सीधा ही लिफ्ट बाबा की गोद में जाके उतरती है, आपको उतार देती है। तो बाप के रूप में बाबा क्या करता है, त्रिनेत्री बना देता है, त्रिनेत्री माना तीसरा नेत्र, ज्ञान का तीसरा, समझ का तीसरा नेत्र दे देता है। टीचर के रूप में त्रिकालदर्शी बना देता है, मतलब स्वदर्शन चक्रधारी बना देता है। पांचों स्वरूप है ना आत्मा के, अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, आदि देवता स्वरूप, मध्य पूज्य स्वरूप, संगम योगी ब्राह्मण स्वरूप, और न्यारा प्यारा फरिश्ता स्वरूप, और फिर अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप। तो पांच जो ये चक्र है ना, स्वदर्शन चक्र, ये हमको बाबा किस रूप में देता है, टीचर के रूप में, और सदगुरु के रूप में मास्टर त्रिलोकीनाथ बना देता है। जब चाहें जहां चाहें हम यहां बैठे बैठे सूक्ष्म वेतन में जाएं, परमधाम में जाएं और चय सुखधाम में जाएं। तो ये हमें बार बार एक एक संबंध की गहराई से अनुभूति करो, तो इस तरह से हमारे अंदर भावना पैदा होती जाएगी, और जब उसको भावना को हम लंबा करते जाएंगे, रोज के रोज बाबा की मुरली को इतना प्यार करेंगे, सोने के पहले पढ़ेंगे, उठते ही सबसे पहले बेड के साथ ही रख के सोएं, सिराने के साथ ही रख के सोएं, उठते ही पहली नजर कहां जाए, बाबा गुड मॉर्निंग की मुरली पढ़ो, सोते समय मुरली पढ़ो, और फिर उठ के फिर मुरली पढ़ो। आपने पता है अनुभव नहीं है आपको लव लेटर का, है ना, नहीं तो लव लेटर जिसको होता है ना, जिसके पास लव लेटर मिलता है ना उसको, उस दिन वो सारा दिन उसी को पढ़ते रहते हैं, बार 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 पढ़ते ही रहेंगे, सिराने से लगा के रखेंगे, और उसको पढ़ते पढ़ते ही सो जाएंगे, और पढ़ते पढ़ते उठते ही फिर पढ़ना शुरू कर देंगे ना। तो ये इसलिए बाबा का लेटर है ना, लव लेटर ही है, इससे इतना प्यार करो। ये इसमें जो संकल्प है, जब उसको हम बार बार अपना स्वभाव परिवर्तन करेंगे, तो हमारी भावना, हम बाबा की भावना कैच करेंगे, वृत्ति हमारा वायुमंडल इतना बड़ा हो जाएगा कि सीधा सूक्ष्म वतन से जाके मिल जाएगा। हमारा जो बाबा के लिए, जो जब हम बाबा को अपने दिल में लाएंगे ना, कि भावना बाबा के प्रति, बाबा कैसा है, बाबा कैसा है, बाबा की महिमा, तो इतना बड़ा हमारा वायुमंडल हो जाएगा कि सीधा बाबा से कनेक्ट हो जाएगा। तो सूक्ष्म वतन में जो कुछ बाबा सोचेगा हमको टच होगा, हम जो कुछ सोचेंगे बाबा को टच हो जाएगा, और फिर उसके असर में हम कार्य करेंगे। जैसे बाबा से हर कदम पर राय लेंगे, कुछ भी करना हो, बाबा ये करें क्या, बाबा ऐसा करें क्या, बाबा ये ऐसे कह रहे हैं मैं ऐसे कर लूं क्या, बाबा ऐसे बोल रहे हैं कि मैं करूं क्या, हर कदम पे बाबा की राय लेंगे, और फिर हमारे नए इंप्रेशन बनते जाएंगे, स्पिरिचुअल इंप्रेशन बनेंगे। ये स्पिरिचुअल इंप्रेशन ही हमारा स्वभाव बनेगा, फील होगा शांति क्या है, पवित्रता क्या है, रूहानी प्यार क्या है, अतीन्द्रिय सुख क्या है, आनंद क्या है, शक्तियां क्या है, और यही फिर हमारे बिलीफ सिस्टम बन जाएंगे और यही हमारे नए संस्कार बन जाएंगे। तब पवित्रता हमारा संस्कार बन जाएगी, शांति हमारा संस्कार बन जाएगी। अभी हम खाली बोलते हैं शांत स्वरूप आत्मा है ना, पर शांति क्या होती है उसकी अनुभूति नहीं है, और उसका अनुभव भी मूर्त बनेंगे, रूहानी प्रेम के अनुभव भी मूर्त बन जाएंगे, आनंद के अतिंद्र सुख के अनुभव भी मूर्त बनेंगे, एक एक शक्ति के अनुभव भी मूर्त बन जाएंगे। और जब अनुभव भी मूर्त बनेंगे तो क्या होगा, संस्कार परिवर्तन हो जाएगा, तब हम परिवर्तन बहुत फास्ट होगा। और वो अनुभव भी मूर्त बनने से फिर हम दूसरों को अनुभव करा सकेंगे। किसी को बोलो शांत हो जाओ, तो शांत होने से मतलब चुप रहने का मतलब शांत नहीं है। देखो जितना हम एबीसीडी का बार बार मनन चिंतन मंथन सिमरण करते हैं, मनन माना रिवाइज करना, चिंतन माना गहराई में जाना, और मंथन माना उसको और गहराई में जाना, मतलब उसको और जितने भी आपने मुरलियां पढ़ी हैं उससे कोरिलेट करना कि बाबा ने ये कहा था, बाबा ने ये कहा था, इस समय ऐसा कहा था, इस समय ऐसा कहा था। और फिर बाबा से हम जब बात करते हैं ना, जैसे मंथन कर रहे होते हैं तो बाबा से कनेक्ट हो जाते हैं, तो बाबा से पूछते हैं बाबा इसका क्या अर्थ था, मेरे लिए इसका क्या अर्थ है, इस महावाक्य का अर्थ क्या है, तो बाबा हमको बताता है बच्चे इसका अर्थ ही है। और मंथन माना जो मक्खन निकला और फिर उसको कार्य में लगाना, सिमरना माना सिमर सिमर सुख पाओ, कार्य में लगाओ, कार्य में जब लगाया तो रिकॉर्ड हो गया, जब भी हम कार्य में लगाए रिकॉर्ड हो जाता है, नया संस्कार बन गया। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि संस्कार क्या परिवर्तन होता है, या संस्कार कहें तो विक्रम विनाश कैसे होते हैं। ऐसा नहीं कि ऊपर हम गए और योग अग्नि ज्ञान चिता पे बैठे, योग अग्नि माना एक संकल्प में हम टिक गए। योग अग्नि का मतलब ऐसा नहीं कोई अग्नि जल गई और उसमें हमारे विक्रम विनाश हो गए, ऐसा डिलीट नहीं होते। हमारे अंदर क्या होता है, जो संस्कार मेरे अंदर, गुस्सा करने का संस्कार था मान लीजिए, आज मेरे को मैंने क्या किया, मैंने अभी जो आत्मा मुझे रोज गुस्सा करती है, जब मुझे गुस्सा दिलाती है बाय चांस, मुझे कुछ इरिटेट करते हैं मान लीजिए कुछ लोग, तो मुझे गुस्सा दिलाते हैं, मुझे रोज गुस्सा आता है उसको देख के, उनके व्यवहार को देख के। आज वो व्यक्ति मेरे सामने आया, मैंने सुबह से मैं अभ्यास कर रहा हूं, बाबा ने कहा बच्चा मीठा बनना है, सबसे प्यार से बोलना है, कोई कुछ भी करे तुम्हें चुप रहना है। आज मैं उसी बात को गहराई से मनन कर रहा हूं, बार बार रिवाइज कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं बार बार, फिर चिंतन भी कर रहा हूं, मुझे तो करना ही है ऐसा, मुझे ऐसा बनना ही है बाबा ने कहा, फिर मंथन करता हूं बाबा कैसे करूं। बच्चे जो क्रोध करने वाली आत्मा ना, जो आपको तंग करती है ना, वो कमजोर आत्मा है, तुमको उस पर रहम आना चाहिए। वो क्रोध कर रहा है तो ऐसे जो शराबी है, शराब करने वाला कुछ भी बोलता है आप भी उसको ऐसे समझो। बाबा ने मुझे युक्ति दी, अब वो व्यक्ति मेरे सामने आ गया, अब व्यक्ति मेरे सामने फिर शुरू कर दिया उसने, और उसकी तो रोज आदत है, उसने फिर मेरे सामने तंग करना शुरू कर दिया, तो मैं क्या करता हूं, उसी स्थिति में टिक जाता हूं ना, मनन किया, चिंतन किया, मंथन, मक्खन निकला, उसको मैं कार्य में लगा रहा हूं, मैं फील कर रहा हूं नहीं ये व्यक्ति को ऐसा है, मेरा पिछले जन्म का कर्मों का हिसाब किताब, शायद मैंने इसकी इंसल्ट की थी, इसको गाली दी होंगी, इसको गुस्सा किया हो, इसलिए मुझे वापस गुस्सा करता है, अब मुझे सहन करना है, समाना है। बाबा की याद में टिक जाता हूं, टिक के बाबा से करंट लेता रहता हूं, और वो बोलता रहता है मैं समाता रहता हूं, सहन करके समाता रहता हूं। अब क्या हुआ, अब मेरे अंदर वो क्या हुआ, एक नया रिकॉर्डिंग हो गई के सहन करने की और समाने की रिकॉर्डिंग हो गई, उसने मुझे ऐसा बोला, सहन करने समाने की रिकॉर्डिंग हो गई। अब मुझे क्या होगा, अगली बार फिर वो मिलेगा, थोड़ी देर में बोल के चुप हो जाएगा, फिर दोबारा मिलेगा, फिर दोबारा करेगा, कल भी मैंने ऐसे कर दिया। अब मेरा नया संस्कार बन गया सहन करने का, समाने का, गुस्सा खत्म हो गया, तो यह विक्रम विनाश हुआ। ऐसा नहीं कि ऊपर से कुछ आग आई और विक्रम विनाश की डिलीट हो गया, ऐसा नहीं है, मतलब वो फाइल मेरी मर्ज हो गई, जो गुस्सा करने वाली फाइल थी मर्ज हो गई, और शांत रहने वाली फाइल इमर्ज हो गई। अगर गुस्सा विनाश हो जाता मेरा, तो आधे क्लब के बाद जब लास्ट में दोबारा आता, गुस्सा आता ही नहीं फिर दोबारा, तो विनाश नहीं होता है एक्चुअली। ऐसे हम बोल देते हैं भस्म हो गया, पाप कर्म भस्म हो गए, भस्म नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, मर्ज हो जाते हैं, सारा मर्ज और इमर्ज का खेल है। आज अमृत वेले योग में यही चिंतन चला था, और बाबा से पूछा भी यही, तो बाबा ने कहा बच्चे हम ऐसे बोलते हैं है ना कि योग अग्नि से विक्रम विनाश होते हैं, पर योग अग्नि से आपके अंदर वो शक्ति आ जाती है कि आप उसमें रिएक्शन नहीं करते, और आप अच्छे कर्म बाबा की श्रीमत के अनुसार उस श्रीमत को कार्य में लगाते हो, तो नया संस्कार बन जाता है, ऐसे संस्कार परिवर्तन हो जाते हैं। आसुरी संस्कार से आपके ब्राह्मणों के संस्कार पहले बनते हैं, ब्राह्मण माना बेहद, जिसकी मन और बुद्धि बेहद में रहते हैं, फिर फरिश्ता के संस्कार बनते हैं, न्यारा प्यारा बन जाते हैं, और फिर अंत में हम कैसे बन जाते हैं, देवता माना दैवी गुणों से भरपूर बन जाते हैं। पहले अगर हम इस तरह से समझे, पहले हम काले थे, ठीक है, मनुष्य शूद्र शूद्र जन्म था हमारा, उससे हम ब्राह्मण बने। तो ब्राह्मण बनना माना बाबा ने वो हमको डिलीट कर दिया, हमारा वो था ना देह दे के संबंध दे के संभाव संस्कार दे के पदार्थों का, उसको करते ना क्या ब्लीच कर देते ना, तो ब्लीच कर दिया, या समझो उसको हमने डिलीट कर दिया, मिटाते ना उससे, किससे क्या चीज होती ना डिलीट, डिलीट करने की इंक होती ना एक, तो उससे हम डिलीट कर देते हैं। और फिर क्या हुआ, हमने फरिश्ता माना, हम बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट हो गए, और उसके बाद लास्ट में जो हम अभी जो बनते हैं उसमें रंग भर दिए, रंग माना दैवी गुणों रूपी रंग भर दिए, तो देवता बन गए। इस तरह से अभी हम ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता स्वरूप में आ जाते हैं। तो इस तरह से जब हम ये पुरुषार्थ करते हैं तो अभी हमको यही अटेंशन रखना है कि हमारा साधन है मुरली। तो जितनी बार हम अपना जो इसी तरह से अपने नई स्मृतियां बनाते जाएंगे, बाबा की एक एक मुरली के महावाक्य को उसको उसकी गहराई में जाएंगे, अर्थात उसको भावना का रूप देंगे पहले, और उसी भावना को हम लंबा करेंगे, लंबा करने सारा दिन उसी के मनन चिंतन में रहेंगे, उसी का मंथन करेंगे, तो हमारी वृत्ति बदल जाएगी। अपने भाई बहनों के प्रति जिनसे हम कार्य व्यवहार में आते हैं उनके प्रति हमारी वृत्ति बदल जाएगी, जो हमें तंग करते हैं उनके प्रति हमारी वृत्ति बदल जाएगी, जिनसे हमारे हिसाब किताब उनके प्रति वृत्ति एटीट्यूड बदल जाएगा, हमारे आसपास वायुमंडल आ जाएगा, और उस वायुमंडल के असर में हम क्या करेंगे, हम उस वायुमंडल के असर में हम क्या करेंगे, फिर नए इंप्रेशन बनेंगे, नए बिलीफ सिस्टम बनेंगे, और नए संस्कार बनते जाएंगे। और जब नए संस्कार बन जाएंगे, पहले ब्राह्मणों के संस्कार माना, हमारी मन और बुद्धि बेहद में रहकर हम कार्य करेंगे, बेहद माना बेहद बाबा की याद में, बेहद बाबा से सर्व संबंध निभाते हुए, और बेहद ड्रामा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा बहुत अच्छा, जो होने वाला सबसे अच्छा। जब इस तरह से हम करते हुए कर्म करेंगे तो हम देखेंगे प्रैक्टिकली हमारे रोज नए संस्कार बनते जाएंगे, बाबा की श्रीमत के अनुसार नए संस्कार बनते जाएंगे, और वो नए संस्कार हमें एक्चुअली ऐसा नहीं कि हमारे ऊपर से कोई एक, मैं हाँ एक बात तो मैं क्लियर कर दूं पांच मिनट में, हमारे कई बार भाई बहने सोचते हैं कि हम लोग योग करेंगे ना, जैसे बाबा से याद करते हैं ना, योग करने बैठते हैं तो ऊपर से पवित्रता आती है, पवित्रता का सागर है शिव बाबा, तो पवित्रता के सागर से पवित्रता मेरे अंदर आ रही है, शांति के सागर ऊपर शिव बाबा बैठा है, बाप दादा बैठे उनसे शांति मेरे अंदर आ रही है, उससे रूहानी प्यार मेरे अंदर आ रहा है, ऐसे कभी नहीं आता है, ऐसे आता तो अब तक कभी का आ गया होता है ना। हमको पवित्रता बनानी पड़ती है, शांति बनानी पड़ती है, जैसे कहते अपना अपनी घोट तो नशा चढ़े, मेहनत किस बात में है, यही तो मेहनत है, अगर ऊपर से आ जाती तो मेहनत की क्या बात थी, बना बनाया माल ऊपर से आता हम तो बन जाते थे, अभी कभी के बन गए होते, किसको 40 साल हो गए, किसको 30 साल हो गए, किसको 25 साल 50 साल भी हो गए हैं, क्यों नहीं बने, क्योंकि हमको जितना हम ये मनन चिंतन मंथन करेंगे एबीसीडी जैसे पर मुरली या कहो या एबीसीडी का मनन चिंतन करते जाते, उतना हमारी मन बुद्धि पवित्र होती जाती। पवित्रता का मतलब क्या है, बाप से कंबाइंड होकर दूसरों के सत्य स्वरूप को देखना और सत्य स्वरूप में व्यवहार करना, सत्य स्वरूप के आत्मिक स्वरूप में, सबका आत्मिक स्वरूप देखना, आत्मिक स्वरूप में व्यवहार करना, और लगाव किसी भी देहधारी से लगाव झुकाव प्रभाव और टकराव भी अपवित्रता है। किसी भी लौकिक चाहे अलौकिक देहधारी से अगर हमारा थोड़ा भी लगाव है, आज का स्लोगन भी था ना यही वाला, नहीं वरदान था आज का ये वाला ना, तो लगाव मुक्त भव है ना, तो लगाव भी अपवित्रता है। ब्राह्मणों का अभी हमारे अंदर वैसी अपवित्रता नहीं रही है, फिजिकल अपवित्रता नहीं है, किंतु लगाव रूपी अपवित्रता आज भी है। कोई हमको अच्छा लगता है, उसके साथ ही बैठ के खाना खाना है, उसके साथ ही रहना है, उसके साथ घूमना है, उसी से मनन चिंतन करेंगे, ये भी अपवित्रता है, क्योंकि जब हम याद करने बैठेंगे वो लगाव वाला याद आएगा। एक मुरली में था, लगाव वाला कभी भी 108 की माला में नहीं आ सकता है, उसको सलाम भरना ही पड़ेगा धर्मराज के दरबार में। तो इसलिए किसी भी देह, चेक करो कि पवित्रता का मतलब है लगाव मुक्त, किसी भी देहधारी से हमारा जरा भी लगाव ना हो, किसी भी देहधारी से हमारा लगाव सिर्फ शिव बाबा से हो, झुकाव किसी की तरफ भी ना हो, वो क्या कहता है वो क्या कहती है किसी से नहीं होना चाहिए। एक बाबा क्या कहता है बाबा से सुनना है, आज से मुरली में ना बाबा से सुनना है, जो बाबा सुनता सुनाता है वही सुनाना है, और फिर किसी के प्रभाव में मत आओ, रिगार्ड सबका रखो किंतु प्रभाव में सिर्फ एक शिव बाबा के प्रभाव में आओ। किसी देहधारी के प्रभाव में आ गए तो वही याद आएगा या याद आएगी, तो किसी देहधारी के प्रभाव, यह भी अपवित्रता है। और टकराव तो किसी से मत रखो, ठीक है। तो और ये तो एक पवित्रता हो गई। और फिर इस शिष्य रूपी ड्रामा में किसी के भी पाठ को देख करके कभी भी क्या क्यों कैसे करना भी अपवित्रता है, क्योंकि क्या क्यों कैसे किया माना वैध संकल्प चले तो वैध संकल्प अपवित्रता है। जब आप याद करने बैठोगे बाबा को तो ये याद आएगा, ऐसा क्यों करते हैं भाई साहब, ये बहन जी ऐसा क्यों करती हैं। अरे उसका पार्ट है ड्रामा में, भगवान को पसंद है, तुम क्यों ऑब्जेक्शन करते हो? तो क्योंकि हम तो त्रिकालदर्शी नहीं है, हम तो बाबा के, जितना बाबा को तो आदि अंत सब पता है, हमको तो इतना ही पता है। तो बाबा को, जब बाबा कुछ नहीं कहते तो हम क्यों कहें, हम तो डायरेक्टर नहीं ड्रामा के। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। तो ब्राह्मणों का ये जो पवित्रता की डेफिनेशन ये है, सत्य स्वरूप को देखना, सत्य स्वरूप में व्यवहार करना, और किसी भी देहधारी से लगाव झुकाव प्रभाव रखना, टकराव रखना भी अपवित्रता है, और ड्रामा में किसी के पार्ट को देख के क्या क्यों कैसे करना भी अपवित्रता है। ये पवित्रता हमको बनानी पड़ेगी, ऊपर से नहीं आएगी। और जब ऐसी पवित्रता हमारे अंदर आएगी तो शांति आएगी। शांति भी हमको बनानी पड़ेगी। कैसे बनानी पड़ेगी? शांति का अर्थ क्या है? शांति माना बाप से कंबाइंड होकर ना पास्ट का चिंतन करना ना भविष्य की चिंता करना, वर्तमान में बाबा से कंबाइंड होकर फिर सोचना, देखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, खाना, लोगों से मिलना, संबंध संपर्क में किसी ने कुछ कहना है तो मिलना, सैर करना, कार्य व्यवहार में आना और सोना, ये शांति है। अशांति किसे कहते हैं? जो पास्ट का चिंतन करो तो पास्ट का चिंतन और भविष्य की चिंता, 90% संकल्प पास्ट और भविष्य से आते हैं। अगर बाबा से कंबाइंड होकर आप सोचोगे, देखोगे, पढ़ोगे, सुनोगे, लोगों से मिलोगे तो वर्तमान में ही रहेंगे और तीन ही संकल्प चलेंगे 30 की बजाय, इसे शांति कहते हैं। तो ये शांति का अर्थ है। पास का चिंतन बिल्कुल ना चले, भविष्य की चिंता बिल्कुल ना हो, बाबा साथ में है जो बीत गया बिंदु, भविष्य जो आने वाला है बाबा के साथ है, बाबा हमारे साथ है, वर्तमान में बाबा हमारे साथ है। तो ये चिंतन, ये शांति है। ये शांति भी हमको बनानी, अटेंशन रखना पड़ेगा तो शांति बनेगी। रूहानी प्यार, फिर इससे रूहानी प्यार पैदा हो। रूहानी प्यार माना इंग्लिश में मैं कहूं तो अनकंडीशनल डिग्निफाइड रेस्पेक्टफुल एक्सेप्टेंस एंड केयर फॉर ईच एंड एवरी वन इन द यूनिवर्स। अर्थात विश्व में बाबा से कंबाइंड होके विश्व में हर आत्मा को, उसके हर रोल को बिना शर्त के आदर के साथ स्वीकार करना, और फिर ईश्वरीय नियम मर्यादाओं के अंदर रखे उसकी पालना करना। बाबा जब सबको स्वीकार करता है बिना शर्त के, आतंकवादी भी उसके पास जाता है, डाकू भी जाता है, स्मगलर भी जाता है, उसको भी लगता है बाबा मुझे अल्लाह ताला बोलो या जो भी बोलो, है ना, वाहे गुरु कहो या जो भी कहो, उसको लगता है बहुत मुझे बहुत प्यार कर रहा है। वो कहता है मेरा मिशन सफल होना चाहिए, उसे लगता है हाँ कह रहे भगवान, कह रहा है जाओ बच्चे सफल हो जाओ। नहीं, क्योंकि उसके मन में सबके लिए एक्सेप्टेंस है। उसके मन में ये नहीं कि ये तो आतंकवादी है, चलो ये आ गया पागल मेरे पास, है ना, उसको मैं सुनूंगा ही नहीं इसकी बात। नहीं, उसको भी बड़े लगता है, बड़े ध्यान से सुन रहा है मुझे। तो हम क्या करते हैं, हम जजमेंटल हो जाते हैं, ये तो है खराब, उसकी बात को इग्नोर करते हैं, ध्यान ही देते हैं। तो ये प्यार नहीं है। और जब ऐसा प्यार हम सबको स्वीकार कर लेते हैं तो फिर हम बाबा की गोद का अनुभव कर सकते हैं। तब हम एक्चुअली बाबा सूक्ष्म वतन में माना बाबा का दिल, सूक्ष्म शरीर माना पवित्र बुद्धि, पवित्र मन, पवित्र संस्कार, और सूक्ष्म वतन माना बाबा का दिल, शिव बाबा का दिल। अभी वहां तो सिर्फ एक ही बच्चा बैठा है, ब्रह्मा बाबा, जिसने अपने मन बुद्धि संस्कार को पावन सत्वप्रधान, संपूर्ण पावन सत्वप्रधान बना लिया है और बाबा के दिल में जाके बैठ गया, और ब्रह्मा बाबा के दिल में शिव बाबा आके बैठ गया। क्योंकि ब्रह्मा बाबा का दिल कैसा है, एकदम सच्ची और साफ है। तो ये एग्जाम्पल है सूक्ष्म वतन, शिव बाबा के दिल में ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा के दिल में शिव बाबा। अभी तक एक ही बनाया ऐसे, हम लोग बन रहे हैं, प्रोसेस में। तो हमको बाबा के दिल में पहुंचने के क्या करना पड़ेगा? आज्ञाकारी बनना पड़ेगा, वफादार बनना पड़ेगा, ईमानदार फरमानबरदार बनना पड़ेगा। तो बाबा का दिल, अगर हम बाबा के दिल में जाके बैठना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? हमको इस बाबा की जो आज्ञा है ना उस पर चलना पड़ेगा। हमें पवित्र पवित्र बनना पड़ेगा, हमको सबसे शांति में रहना पड़ेगा, सबसे रूहानी प्यार रखना पड़ेगा, तब हम बाबा की गोद में पहुंच सकते हैं, तब हम बाबा की गोद का अनुभव कर सकते हैं। तो ये बाबा की गोद में पहुंच गए, तब हमें इतनी सुख जब बाबा से महसूस करते हैं, बाबा मुझे प्यार कर रहा है, मैं बाबा की गोद में हूं, बाबा मुझे ऐसे प्यार से देख रहा है, आओ बच्चे आओ, तो ये फीलिंग अतिंद्रिय सुख की फीलिंग है। ये अतिंद्रिय सुख में ना ये ऐसी फीलिंग है जैसे बाबा मेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा, और ये फीलिंग हमारे अंदर खुशी पैदा, मतलब ये जो फीलिंग है ना हमारे अंदर ऐसे खुशी वाले हार्मोन्स पैदा करती है, और ये फीलिंग जो है हमारे अंदर हमें शक्ति हमें क्या करती है, फिर जब हम बाबा की याद में समा जाते हैं तो उसको आनंद की फीलिंग कहते हैं। आनंद माना, आनंद माना बंधन, देह और देह की दुनिया के बंधन के पार, आत्मा उड़ता पंछी परमात्मा के साथ मिलन का अनुभव कर रहा है। तो ये जो फीलिंग है आनंद की फीलिंग, ये ऐसी वंडरफुल फीलिंग है, एक्सटेसी है ना, मतलब देह का भान जरा भी खत्म, हम पता नहीं लगता हम कहां हैं, बस बाबा के पास है, बाबा सिर्फ रह जाता है। तो ये आनंद की फीलिंग है, और एक बार आत्मा को आनंद की फीलिंग आ गई, सत्य को पर यही सत्य है, अतिंद्रिय सुख और आनंद की फीलिंग एक बार आत्मा ने परख ली, फिर उसको देह और देह की दुनिया का भान कम हो खत्म होता जाता है, तब उसको सत्य को परखने की शक्ति आती है, तब उसको यथार्थ निर्णय करने की शक्ति आती है, तब वो ऐसा जिसको एक बार अनुभव होगा ये वाला, वो बड़ी बात को छोटा बना सकता है, विस्तार को सार मिला सकता है, वो समेट सकता है, समेट के मन बुद्धि को बाबा के साथ लगा लेता है, उसकी बुद्धि वहीं लगी रहती है, वो फिर सहन कर सकता है सब कुछ, उसके साथ दुनिया को जो मर्जी करे, देह में कुछ भी हो जाए, कोई भी कर्म भोग आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, वो ऊपर से करंट लेता रहता है, और देहबान देह में जो भी कर्म भोग आते हैं, बाहर परिस्थितियां आती हैं, उसको वो सहन कर लेता है, समा लेता है, इससे सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति आती है, और नई नई प्रॉब्लम्स आए सामना करने की शक्ति आती है, और फिर ऐसा बच्चा ऐसी आत्मा सबको सहयोग भी कर सकता है। और जब ये आठों शक्तियां हमारे अंदर आ जाती हैं तो सातों एनर्जी का बैलेंस हो जाता है, और सातों एनर्जी का जब बैलेंस होता है तो वो हीलिंग एनर्जी बन जाती है। वो हीलिंग एनर्जी कैसी बनती है, वो अपने किसी भी अंग को हील कर सकता है, कहीं भी कोई बीमारी उसको ठीक कर सकता, योग के द्वारा ठीक कर सकता है, आर्टरी ब्लॉक हो आर्टरी को खोल सकता है, लीवर में खराबी हो लीवर ठीक कर सकता है, पेट में खराबी हो पेट ठीक कर सकता है, कहीं भी खराबी हो दमे की बीमारी हो दमा ठीक कर सकता है, कैंसर हो कैंसर ठीक कर सकता है। पर सातों एनर्जी का बैलेंस होना चाहिए। हमारे अंदर क्या होता है, किसी के अंदर ज्ञान ज्यादा है पवित्रता कम है, किसी को लगाव है किसी से इसलिए पवित्रता कम है, किसी के अंदर पवित्रता भी है किंतु शांति कम है, पास की कोई बात को भूल नहीं पा रहे हैं, किसी के अंदर पवित्रता तो है शांति भी है किंतु रूहानी प्यार कम है, किसी को माफ नहीं कर पा रहे हैं एक दो व्यक्ति को, है ना, तो रूहानी प्यार नहीं है, तो उन्हें अत्यंत सुख की अनुभूति नहीं होती, आनंद की अनुभूति नहीं होती, जब आनंद की अनुभूति नहीं तो शक्तियां नहीं आती, शक्तियां नहीं आती तो बैलेंस नहीं होता, और फिर हीलिंग नहीं कर पाते, फिर दूसरों की तरफ देखते हैं, वहां से डॉक्टर से दवाई मिल जाए उससे मिल जाए उससे मिल जाए, तो हीलिंग नहीं। डॉक्टर के पास जाना भी जरूरी है क्योंकि उनसे भी हमारे कर्म भोग हैं, हिसाब किताब है, इसे डॉक्टर के पास भी बाबा टच करेगा, बच्चे उसके पास जाओ, उस डॉक्टर फला डॉक्टर के पास जाओ तो बाबा आपको टच करता है, नहीं कई बार बाबा संदेश मंगाते ना बाबा क्या करें अभी, तो बाबा बताता है बच्चे ऐसे कर रहे हो ना। तो इस तरह से जब हम श्रेष्ठ संकल्प शक्ति, जो बाबा ने श्रेष्ठ संकल्प शक्ति दी है मुरली सबसे बड़ा खजाना है, तो उससे हमारे अंदर शुभ भावना शुभकामना पैदा होगी, उससे शुभ श्रेष्ठ वाइब्रेशन बनेंगे, और फिर रूहानी वृत्ति बनेगी, रूहानी वृत्ति से रूहानी वायुमंडल बनेगा, रूहानी दृष्टि बनेगी, और फिर हमारे अंदर स्पिरिचुअल इंप्रेशन बनेंगे, स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम बनेंगे, और स्पिरिचुअल आदतें बन जाएंगी, आत्मिक आदतें बनेंगी, ब्राह्मणों की आदतें बन जाएंगी, ब्राह्मणों के संस्कार, ब्राह्मणों की फरिश्तों के संस्कार बनते जाएंगे, फिर देवताओं के संस्कार बनते जाएंगे। इस तरह से हम परिवर्तन करके अपना परिवर्तन करेंगे, फिर साथ साथ विश्व का परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। लास्ट में मैं इसे इतना ही कहूंगा, राजयोग माना सत्य, सत्य की समझ, ज्ञान माना सत्य की समझ, योग माना सत्य का अनुभव, मतलब इंग्लिश में कहूं तो ज्ञान माना अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ, और योग माना रियलाइजेशन ऑफ द ट्रूथ, और धारणा माना बिकमिंग द ट्रूथ, सत्य बनना, और सेवा माना स्प्रेडिंग द ट्रूथ, सत्य को फैलाना। तो जब हम ऐसी हमारी स्थिति हो जाएगी, हमारी मनसा एकदम संपूर्ण पवित्र बन जाएगी, तो मनसा सेवा ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी। जितना हम बाबा को याद करते जाएंगे, हमारे वाइब्रेशंस सारे विश्व में फैलते, हमारी कैचिंग पावर बढ़ जाएगी। बाबा जो हम हमसे कहना चाहेगा करना चाहेगा तुरंत हम कैच करेंगे, लोग जो हमसे चाहेंगे हम कैच करेंगे, कैचिंग पावर बढ़ जाएगी, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आ जाएगी, तब हम सारे विश्व की मनसा सेवा कर सकेंगे। ओम शांति।